समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। प्रत्येक विषय या विज्ञान का अपना एक दायरा या क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत ही वह अपना अध्ययन कार्य सीमित रखता है और दूसरे विज्ञानों से भिन्न पहचाना जाता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, इस प्रश्न को लेकर समाजशास्त्रियों में दो मत प्रचलित हैं। नंबर एक, स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय। नंबर दो, समन्वयात्मक संप्रदाय। प्रथम मत या विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है और द्वितीय विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इनमें से प्रत्येक विचारधारा को हम यहाँ स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय, फॉर्मल स्कूल। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजवादी जॉर्ज सिमाइल हैं। इस संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वानों में वीरकांत वान वीज, मैक्स वेबर, टानिज आदि प्रमुख हैं। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाए। सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। इस संप्रदाय या विचारधारा से संबंधित प्रमुख विद्वानों के विचार अग्र प्रकार हैं। पहला, जॉर्ज सिमाइल के विचार। जॉर्ज सिमाइल समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। आपकी मान्यता है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। आपके अनुसार सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप और एक अंतर्वस्तु होती है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्वरूप और अंतर्वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के रूप में तीन एक से स्वरूप वाली बोतलों में से एक में पानी, दूसरी में दूध और तीसरी में शराब भरी जा सकती है। पानी, दूध और शराब का बोतलों के स्वरूप पर और इनके स्वरूप का बोतलों के अंतर्वस्तु पानी, दूध, शराब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोतल की विशेष आकृति या बनावट उसका स्वरूप है और उसमें भरा हुआ पानी, दूध या शराब उसकी अंतर्वस्तु है। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु में भी अंतर पाया जाता है और ये भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व आदि सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सिमाइल के अनुसार अन्य सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक संबंधों के अंतर्वस्तु का अध्ययन किया जाता है और एक विशेष विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का। दूसरा, वीरकांत के विचार। वीरकांत भी समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के समर्थक थे। आपने बताया कि समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अथवा समूह से बांधते हैं। यह सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक या मानसिक पहलू हैं। इन्हीं के आधार पर विभिन्न सामाजिक संबंध बनते हैं और इन्हीं सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण होता है। अतः समाजशास्त्र को इन्हीं मानसिक अथवा भावनात्मक तत्वों या संबंधों के स्वरूपों तक अपने को सीमित रखना चाहिए। स्वयं वीरकांत ने लिखा है कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। तीसरा, वानविज के विचार। वानविज भी सिमाइल के समान समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। आपने लिखा है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। आपने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख करते हुए बताया है कि समाजशास्त्र को इन्हीं स्वरूपों के अध्ययन में अपने आप को लगाना चाहिए। चौथा, मैक्स वेबर के विचार। मैक्स वेबर समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। आपके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक क्रियाओं को आपने उन व्यवहारों के रूप में स्पष्ट किया है जो कि अर्थपूर्ण है और साथ ही जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होते हैं। मैक्स वेबर की मान्यता है कि सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है। अतः समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहार को समझना और उसकी व्याख्या करना है। आप मानते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन का ही अध्ययन किया जाना चाहिए? स्वरूपात्मक संप्रदाय के अन्य समर्थकों में टानिज, बोगल्ट, रास, पार्क, बर्गेस आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस संप्रदाय से संबंधित सभी विद्वान समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक सीमित मानते हैं। उपयुक्त सभी विद्वानों का समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से स्वतंत्र विशिष्ट विज्ञान बनाने का प्रयत्न रहा है। स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना। स्वरूपात्मक संप्रदाय पर अनिश्चितता और अस्पष्टता का आरोप है। इस संप्रदाय के समर्थकों के संबंध में फीचर का कहना है कि इन्हें समाजशास्त्री नहीं कहकर सामाजिक दार्शनिक कहना ठीक होगा, क्योंकि इन्होंने सामाजिक जीवन की व्यावहारिक प्रकृति को समझने का प्रयत्न किया। इन संप्रदाय के प्रमुख कमियां निम्नलिखित हैं। नंबर वन, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वानों का यह कहना गलत है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी अन्य विज्ञान के द्वारा नहीं किया जाता है। सामाजिक संबंधों के बहुत से स्वरूपों जैसे प्रभुत्व, सत्ता, शक्ति, स्वामित्व, आज्ञा पालन, दासता आदि, संघर्ष आदि का अध्ययन कानून शास्त्र में काफी व्यवस्थित रूप में किया जाता है। सोरोकिन ने लिखा है कि स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों द्वारा किया भी जाता है, अतः समाज शास्त्र के लिए मानवीय संबंधों के स्वरूपों के विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं है। नंबर दो, इस संप्रदाय के समर्थकों ने स्वरूप तथा अंतर्वस्तु में भेद किया है और इन्हें एक दूसरे से पृथक माना है, लेकिन सामाजिक संबंधों के स्वरूप तथा अंतर्वस्तु को एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं है। इस संबंध में सोरोकिन ने लिखा है कि हम एक गिलास को शराब, जल या शक्कर से बिना उसके स्वरूप को परिवर्तित किए हुए भर सकते हैं, परंतु मैं एक सामाजिक संस्था के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकती कि उसका स्वरूप सदस्यों के बदल जाने के बाद भी परिवर्तित नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में स्वरूप और अंतर्वस्तु को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। नंबर तीन, इस संप्रदाय के समर्थक समाज शास्त्र को अन्य सभी सामाजिक संबंधों से, अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र और परिशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। सोरोकिन ने इस संबंध में लिखा है कि शायद ही ऐसा कोई विज्ञान हो जो अन्य विज्ञानों से किसी न किसी रूप में संबंध न रखता हो। नंबर फोर, इस संप्रदाय के समर्थक समाज शास्त्र को एक नवीन विज्ञान मानते हुए इसके अध्ययन क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों तक ही सीमित रखने पर जोर देते हैं। ऐसी दशा में समाज शास्त्र का क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाएगा, जो कि विषय के विकास की दृष्टि से उचित नहीं है। इस संप्रदाय के समर्थक समाज शास्त्र के अंतर्गत केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन पर जोर देकर सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों की अवहेलना करते हैं, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। सोरोकिन ने लिखा है कि यदि स्वरूपात्मक संप्रदाय की मान्यताएं स्वीकार कर ली जाती हैं, तो समाज शास्त्र एक शास्त्रीय या पंडिताऊ तथा मृत विज्ञान होता है, जिसमें मानव संबंधों की एक अनुपयोगी सूची मात्र होती। सेकेंड, समन्वयात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खिम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो समाज शास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है। इन विद्वानों के अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाज शास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे तो संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना है, और इस संबंध में इस संप्रदाय के समर्थकों ने दो तर्क दिए हैं। नंबर वन, समाज की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और एक अंग में होने वाला कोई भी परिवर्तन दूसरे अंगों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता है। अतः समाज को समझने के लिए उसके विभिन्न इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंध को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य उसी समय हो सकता है जब समाज शास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए और इसके क्षेत्र को काफी व्यापक रखा जाए। नंबर दो, प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग या पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में राजनीति शास्त्र द्वारा राजनीतिक जीवन का और अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों या संपूर्ण समाज का समग्र रूप से अध्ययन करता हो। अतः समाज शास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में यह कार्य करना है। ऐसा होने पर ही समाज की वास्तविक प्रकृति या सामाजिक जीवन को समझा जा सकता है। इस संप्रदाय के दृष्टिकोण को ठीक से समझने के उद्देश्य से इसके कुछ प्रमुख समर्थकों के विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला, हाबहाउस के विचार। इंग्लैंड के समाज शास्त्री हाबहाउस समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक है। आपके अनुसार समाज शास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों या सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना है। समाज शास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। समाज शास्त्र यह कार्य निम्नलिखित प्रकार से कर सकता है। पहला, सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूपों तत्वों की जानकारी प्राप्त करके, समाज को स्थायी रखने तथा बदलने वाले कारकों को ज्ञात करके, तथा तीसरा, सामाजिक विज्ञान विकास की प्रवृत्ति और दशाओं का पता लगा के। यह सब कुछ उसी समय संभव है जब समाज शास्त्र को एक सामान्य सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता दी जाए। दूसरा, दुर्खिम के विचार। फ्रेंच समाज शास्त्री दुर्खिम ने समन्वयात्मक विचारधारा का समर्थन किया है। आपने बताया है कि एक सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव है जो विशिष्ट विज्ञानों के विशेष क्षेत्रों के नियमों पर आधारित एक अधिक सामान्य नियमों से मिलकर बना है। यही सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। दुर्खिम ने लिखा है कि हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून का इतिहास, प्रथाएं या धर्म, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए अन्वेषणों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। यद्यपि दुर्खिम समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं, परंतु आपने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पहले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना है ताकि यह अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान अपने स्वतंत्र नियमों का विकास कर सके। इसके बाद इसे सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समन्वय स्थापित करना है। अतः आपने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों, सोशल फैक्ट्स के अध्ययन पर जोर दिया है जिनसे सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है। आपके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधानों से दुर्खिम का तात्पर्य प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचार, भावनाओं और धारणाओं के एक कुलह सेट से है जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियों, व्यवहार के लिए निर्भर करता है। इन्हें समाज के अधिकतर लोग अपना लेते हैं। दुर्खिम के अनुसार ये विचार, भावनाएं और धारणाएं ही एक सामूहिक शक्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसी को अपने सामूहिक प्रतिनिधान नाम दिया। ये सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। तीसरा, सोरोकिन के विचार। आप भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर है। आपने लिखा है कि मान लीजिए यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन विशेष सामाजिक विज्ञान करे, तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य या विशिष्ट विज्ञानों के संबंधों का अध्ययन करे। कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक को किसी न किसी रूप में अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक विज्ञान द्वारा समाज जीवन के एक पक्ष या विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन ही किया जाता है, जबकि विभिन्न घटनाएं पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अतः एक ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके ताकि समाज को समग्र रूप से समझा जा सके। समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करना है। सोरोकिन ने इस बात को निम्न प्रकार समझाने का प्रयत्न किया है। आर्थिक संबंध ए स्मॉल, बी स्मॉल, सी स्मॉल, डी स्मॉल, ई स्मॉल, एफ। राजनीतिक संबंध ए बी ई जी एच आई। धार्मिक संबंध ए बी सी जे के एल। वैधानिक संबंध ए बी सी एम एन ओ। मनोरंजनात्मक संबंध ए बी सी पी क्यू आर। स्पष्ट है कि हम चाहे किसी भी प्रकार के संबंध, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक स्थापित करें अथवा कोई भी क्रिया करें, उनमें कुछ सामान्य तत्व अवश्य होंगे। इनमें ए बी सी कुछ ऐसे ही सामान्य तत्व हैं। इन्हीं सामान्य तत्वों या अंतर संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए और इसे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त विद्वानों के अतिरिक्त वार्ड, मोतवानी, गिन्सवर्ग आदि ने भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना। यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों, घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो यह अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक खिचड़ी मात्र या हरफनमौला विज्ञान बन जाएगा। दूसरा, यदि समाजशास्त्र के एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा। ऐसी दशा में इसे अन्य विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा। तीसरा, यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्य और प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा तो ऐसी स्थिति में यह किसी भी तथ्य या प्रघटना का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा। चौथा, यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा तो इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति नहीं हो पाएगी। समाजशास्त्र विशेष एवं सामान्य विज्ञान दोनों ही रूपों में। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र के विषय के क्षेत्र में, विषय क्षेत्र के संबंध में स्वरूपात्मक एवं समन्वयात्मक दोनों ही संप्रदायों के दृष्टिकोण एकांगी हैं। समाजशास्त्र न तो पूरी तरह से विशिष्ट विज्ञान है और न ही सामान्य विज्ञान है। वास्तविकता यह है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दोनों ही संप्रदायों के दृष्टिकोणों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर गिन्सवर्ग ने लिखा है कि उदाहरण के रूप में यह सभी जानते हैं कि प्राणी शास्त्र एक अर्थ में अनेक विज्ञानों का संकलन है जिसमें प्रत्येक विज्ञान स्पष्टतः एक विशिष्ट विज्ञान है, परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन विशिष्ट विज्ञानों के अतिरिक्त एक सामान्य प्रारिण शास्त्र भी होता है जो कि जीवन की सामान्य दशाओं का एक उन्नत ज्ञान भंडार है। इसी प्रकार समाज शास्त्र में भी सामाजिक जीवन के विभिन्न भागों से संबंधित अनेक विशिष्ट विज्ञान है और इस रूप में समाज शास्त्र समस्त सामाजिक विज्ञानों के एक समग्र समूह के समान है। एक अन्य अर्थ में वह समाज शास्त्र स्वयं ही एक विशिष्ट विज्ञान है जिसका उद्देश्य अन्य विज्ञानों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों को खोजना और सामाजिक संबंधों की सामान्य विशेषताओं का विवरण देना है।